بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ملك السماوات والأرض، الله کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کی تہوں میں ہے. له مقاليد السماوات والأرض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہوگا. وما كان ربك نسيا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. كل يوم هو في شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے. كل له قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. فعال لما يريد، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. يخلق ما يشاء، جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. تعز من تشاء، اے اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں. تذل من تشاء، اے اللہ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. يدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کا انتظام وہ خود اکیلے فرماتے ہیں. يسأله من في السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں سب اسی ایک اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی تمام مخلوقات اسی ایک اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک شکر. میرے محترم دوستو، بزرگو، ہماری امت کی مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ پاک آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک دن اور رات اور عید کی خوشیاں یہ سب عطا فرمائے. رمضان ہو یا عید ہو یا حج ہو، مومن کی زندگی میں روزانہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہے. انسان کو اختیار دیا گیا، خواہش دی گئی، اور اس کے بعد یہ سارے احکامات، واجبات اور مستحبات اور سنت سے اس کو دیے گئے کہ عید ہو یا بقرعید ہو، بندہ اللہ کا ہے، اور تقوی اور پھونک پھونک کے چلنا اور اللہ کے ڈر سے چلنا اور سارے حقوق اور فرائض ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور دل میں خوش ہوتا رہے، نام اعمال میں نیکیاں بھرتا رہے. قیامت میں جا کے جب نام اعمال کھلے گا، اس وقت خوشی کا موقع ہے. بھاگو دوڑو، سب کو دکھاؤ نامہ اعمال، لو جی پاس ہو گئے، لو جی جنت میں چلے گئے. دنیا میں خوشیاں عارضی ہیں. عید کا دن ہوتا ہے، بعض گھروں سے عید کے دن جنازے اٹھتے ہیں، معلوم ہوا کہ رات کو کوئی گھر میں انتقال کر گیا. تو دنیا کی زندگی، ابھی تھوڑی دیر میں رو رہے تھے، تھوڑی دیر میں ہنسنا شروع کر دیا. تو بس ایسا ہی ہے، یہ تھوڑی دیر کا کھیل ہے. اور یہاں کوئی نہیں رہتا، بس اسٹیشن ہے، تھوڑی دیر ہنس لو، تھوڑی دیر رو لو، پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ. تو یہاں پر کوئی سیلیبریشن کی جگہ نہیں ہے. جو حکم ہے، حکم دیا خانہ کعبہ میں بیٹھو، بیٹھ گیا بھائی. مینا میں بیٹھو، مینا میں چلے جاؤ، مزدلفہ میں چلے جاؤ، عرفات میں چلے جاؤ، کنکریاں مار لو، واپس آ جاؤ، گھر چلے جاؤ، قبرستان چلے جاؤ، قبرستان میں جا کے رو، اور جو ہے وہ گھر میں جا کے کوئی ڈنر ہے، کوئی پارٹی ہے، اس میں ہنسو. تو ہے کچھ نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، کیے جاؤ اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو. اللہ تعالی ہماری سوچ سمجھ سے بہت بڑے ہیں. اللہ تعالی کروڑہ مخلوقات کو کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، دنیا کے مضبوط طاقتور لوگوں کو طاقت دیتے ہیں، سائنسدانوں کو علم اور سمجھ دیتے ہیں، ایجادات کرو، عقل مندوں کو عقل دیتے ہیں، خوبصورت لوگوں کو خوبصورتی دیتے ہیں، کروڑوں ماؤں کے دلوں میں اللہ پاک رحم دلی ڈالتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرے، اور پرندوں، جانوروں، چوٹیوں، حشرات، حتیٰ کہ سانپ، بچھو اور سمندر کی مخلوقات، ہر ایک کو اللہ نے اس کے مناسبت سے اس کا علم اور عقل اور سمجھ اور ایک طریقے پر پیدا کیا ہے۔ تو چیزوں کو اللہ کی طرف سے دیکھنا، کیسے اللہ پاک تمام مخلوقات کو سنبھالتے ہیں، کیسے سب کی آوازیں سنتے ہیں، کیسے ماضی، حال، مستقبل سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ آدمی اپنے اندر عجائبات دیکھے کہ آدمی کا دل دھڑک رہا ہے، جس وقت سے پیدا ہوئے اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، آدمی کا دل دھڑک رہا ہے، روزانہ یعنی ایک منٹ میں 70 مرتبہ اور روزانہ 1,00,000 مرتبہ، اور ایک آدمی کی اوسط 60 سال کی زندگی میں 2.5 ارب مرتبہ، 2.5 بلین ٹائم، نان اسٹاپ سروس ہے، تھوڑی دیر کو رک جائے تو آدمی ختم ہو جائے۔ اور آدمی کی آنکھ بنائی اللہ نے، کئی لاکھ رنگوں میں پہچان کر لیتی، آدمی کی کان اللہ نے بنائے کہ کتنے لاکھوں آوازوں میں اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں کی آواز کو آدمی پہچان لیتا ہے۔ روزانہ لاکھوں بچے دنیا میں آتے ہیں، ہر بچے کو اللہ کے خزانے سے خوبصورت آنکھیں، ناک، کان، ہر ایک کی شکل اور نقشہ الگ ہوگا، ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہوگا، ہر ایک کی آنکھ کی پتلی میں کمپیوٹر کا ڈیزائن الگ ہوگا، ہر ایک کی لکھائی اور ہینڈ رائٹنگ الگ ہوگی، اس کے دستخط اور سگنیچر الگ ہوں گے، اس کی آواز الگ الگ ہوگی، اور اس کے بدن میں ایک ایک مالیکیول اور خلیے میں وہ ڈی این اے اور جینیٹک کوڈنگ الگ ہوگی۔ لو جی، جتنی سائنس ترقی کرتی ہے اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اتنا زبردست عالم، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھو یا بڑے سے بڑی چیز کو دیکھو، ایک ایک پتے کا ڈیزائن الگ ہے، اور ایک ایک مخلوق کا ڈیزائن الگ ہے، پھر اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ کی، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو الگ چیز کھلائیں گے، ہر چھوٹے بڑے پرندے اور الگ کلر کے، الگ علاقوں کے، سردی گرمی کے پرندے، ان کے کھانے کے سیڈ الگ الگ، دکان میں جاؤ تو بتائیں گے یہ پرندہ یہ سیڈ کھاتا ہے، تو سیڈ کہاں سے آئے، بیج پرندہ کہاں سے آیا، اللہ نے پہنچایا۔ سمندر کے اوپر کی تہ میں جو مچھلی ہے اس کا کھانا الگ ہے، اور سمندر کی تہ میں کوئی مچھلی ہے، ایک اندھی مچھلی، بلائنڈ فش، سمندر کی تہ میں، اور سمندر میں تھوڑا اندر کوئی جائے تو وہاں روشنی بھی نہیں جاتی، بالکل اندھیرا، ڈارک، کچھ نظر نہیں آتا۔ وہاں پر جو مچھلی ہے اس کو اس کا کھانا اس کے پسند کا اور مزے کا اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ انسان کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ایک دن کسی مخلوق کو کوئی کھانا کھلا سکے، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنی خواہشات، اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں، یہ کیا قصہ ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کو دیکھو، مخلوق کو دیکھو، اور اس کا شکر کرو، اللہ نے کیسی پیاری پیاری مخلوقات بنائی ہیں، پرندوں کا عالم الگ ہے، اور جانوروں کا عالم الگ ہے، اور حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے رینگنے والے جانور وہ الگ ہے، آگے کیمسٹری ہے تو الیکٹران، پروٹون اور مالیکیول اس کا ایک ڈیزائن الگ ہے، اور ہوا میں اڑنے والے اس کا ڈیزائن الگ ہے، کوئی ایسٹرونومی اور فلکیات میں ہے تو ستاروں، سیاروں، چاند اور کہکشاؤں پہ غور کرے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کی نظر سے مخلوق کو دیکھنا، تو اپنا غم بھول جائیں گے، میرے کو کیا ملا، میرے کو کیا نہیں ملا، ارے بھائی یہ کیا لطیفہ ہے، تھوڑی دیر بس اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، ابھی آ جائے گا ٹکٹ اور آگے جانا ہے، यहाँ यह किस्सा इसलिए बयान किया गया कि बाज दफा ऐसा भी होता है, दो वाकयात बंदे और आजिज के इल्म में आए कि ईद के दिन किसी प्यारे का इंतकाल हो जाता है, लो ईद के दिन जनाजा उठा। तो कैसी ईद और कैसी बकरीद, हमने एक आर्टिफिशियल लाइफ बना ली है, उसके पीछे घूमते रहते, वक्त की बर्बादी। भाई ईद का दिन है, जाओ नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, ईद खत्म, जाओ अपने काम में लगो, जिक्र करो, अस्कार करो और अल्लाह अल्लाह करो। कितने ही गरीब हैं, लाखों करोड़ों, इनको खाना नहीं मैसर है, पानी नहीं मिलता, कपड़े नहीं है, मखलूक की खिदमत करो। कैसी ईद और कैसी बकरीद, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो ये बताना इसलिए है कि जिनको अल्लाह दीन की समझ देते हैं, वो फारिग वक्त के इंतजार में रहते हैं, किसी बहाने अल्लाह छुट्टी हो जाए, ईद हो या बकरीद हो के रमजान हो के जुमा हो, किसी तरह कुछ वक्त मिले तो मैं कोई काम करूँ। क्या काम करो? अरे भाई कुछ जिक्र अस्कार करो, कुरान पढ़ो, जाके लोगों की खिदमत करो, खाने पकाकर बांटो गरीबों को, किसी लोग बेचारे बेसहारा हैं उनको जाके कोई आराम पहुंचाओ, बहुत करने के काम है। तो फारिग वक्त के इंतजार में रहना चाहिए कि किस तरह ईद आए कि बकरीद आए और मैं किस तरह रूटीन लाइफ से निकलूं और जाके किसी खिदमत के काम में लगूं। खिदमत खल्क के बारे में आज मजमून पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की बंदे से मोहब्बत की एक अलामत है, वो है कि बंदों की खिदमत करना। जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं, वो लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है, और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, उनके काम आना, उनकी मुसीबतों को दूर करना और उनके दुख दर्द को बांटना और हमदर्दी, गमखारी और शफकत करना। लो जी, कितने उर्दू के अल्फाज इसमें आ गए। यानी बच्चों को उर्दू सिखाएं कि भाई उनकी वोकेबलरी बड़ी हो तो बड़े होके उर्दू में कुछ बातचीत कर सके। खिदमत और दुख दर्द और हमदर्दी और गमखारी और शफकत और रहमदिली, देखो कितने अल्फाज तो उर्दू और अरबी में भी कॉमन है। उर्दू सीखोगे तो अरबी भी सीख जाओगे, कुरान भी याद हो जाएगा, और उर्दू को छोड़ोगे तो अरबी को अंग्रेजी के रास्ते से समझोगे, लंबा किस्सा है, साल साल लगेंगे, उसके बाद भी भूल जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। जो आदमी दुनिया में किसी की तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह ताला आखरत में उसकी तकलीफें दूर फरमाएगा। जो आदमी किसी के कोई डिफेक्ट या शॉर्ट कमिंग या किसी के कोई कमी कोताही और ऐब किसी का देखा, उस पर पर्दा डाल दे, तो अल्लाह ताला कयामत में उस पर आदमी पर पर्दा डाल देंगे। अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा वो है जो अल्लाह के बंदों के साथ एहसान और भलाई करे, उनका मुखलिस रहे, खैरखा रहे और उनके लिए दुआ करे। फराइज अदा करने के बाद सबसे अफजल अमल और पसंदीदा अमल ये है नवाफिल में कि किसी मुसलमान की खिदमत करें, किसी को खुश करें, बंदे को खुश करें। जब कोई आदमी किसी मोमिन को खुश करता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं जो अल्लाह की इबादत करता है और तौहीद बयान करता है। बंदा अपनी कब्र में चला जाता है तो वो खुशी उसके पास आती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वो खुशी हूँ कि तुमने फलां शख्स को की खिदमत की थी और खुश किया था, तो मैं आज कब्र में तुम्हारी वहशत को दूर करूँगी और तुम्हें कलमा शहादत पर साबित रखूँगी और कयामत की हाजिरी के मकामात में तुम्हारे साथ रहूँगी और शिफात करूँगी। अल्लाह अकबर, इसको इब्न दुनिया ने रिवायत किया है। जो आदमी किसी मुसलमान की हाजत पूरी करने के लिए चले, कुछ काम आता नहीं है, तरीका सलीका नहीं है, असबाब हाथ में नहीं है, एक पैसा एक डॉलर भी नहीं है, काम भी आता नहीं कि मदद कैसे करें, और कुछ पैसे भी नहीं है, लेकिन जरूरत थी मदद को चल खड़े हुए। चल खड़े होने का मकसद ये है कि चल फिर कर फोन के जरिए, नेट के जरिए, किताबों के जरिए, दुआ के जरिए किसी तरीके से दूसरे को फायदा पहुंचाएं, दीन का हो या दुनिया का। तो आदमी चल खड़ा हुआ किसी दूसरे की मदद करने के लिए, तो उसको 10 साल मस्जिद में बैठे एतकाफ का सवाब मिलेगा। देखो ये है इबादत और खिदमत खल्क का मुआजना। इबादत का ट्रैक अलग है, खिदमत खल्क का अलग है। 10 साल एतकाफ का सवाब, एक दिन एतकाफ का सवाब इतना है कि आदमी को जहन्नम से 3 खंदक दूर कर देता है, और हर खंदक का फासला जमीन और आसमान के फासले के बराबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के जो खास बंदे होते हैं उनकी अलामत यह है कि आम लोगों पर, इन मुसलमानों पर निहायत शफकत और रहमत करते हैं। अल्लाहु अकबर। रोजाना ये दुआ किया करें कि ऐ अल्लाह पूरी उम्मत पर रहम फरमाइए, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत को की रोजी कुशादा कर दीजिए, उसकी मगफरत कर दीजिए और पूरी उम्मत की मगफरत फरमा दीजिए। तो जितने लोग उम्मत में हैं उतनी इतना ज्यादा सवाब होता है। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात ख्वाब देखा कि बहुत रोशनी हो रही है, नूर है, एक फरिश्ता बैठा है और लोगों के नाम लिख रहा है, लिस्ट बना रहा है। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? फरिश्ते ने बताया कि मैं उन लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट बना रहा हूँ जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम अदहम ने पूछा कि मेरा नाम भी है इसमें? फरिश्ते ने कहा आपका नाम नहीं है यहाँ। तो इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई ये तो बहुत ऊंची लिस्ट है, बड़ा ऊंचा मुकाम है कि अल्लाह से मोहब्बत करे, तो मेरा नाम तो इसमें आ नहीं सकता। चलो ऐसा करो, एक और लिस्ट बनाओ, उसके अंदर मेरा नाम उस लिस्ट में लिखो कि जो लोग अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते। यानी फरिश्ता तो एक लिस्ट बना रहा था कि वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और उसमें तो नाम आया नहीं। तो इन्होंने कहा अच्छा एक और लिस्ट बना लो, उसमें जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं उसमें लिख लो मेरा नाम। फरिश्ते ने कहा कि बहुत अच्छा। तो ख्वाब ख़त्म हो गया। थोड़े दिन बाद दोबारा ख्वाब में देखा, एक नूर है और फरिश्ता कुछ फहरिस्तें बना रहा है, लिस्ट बना रहा है। पूछा कि आप क्या कर रहे हो? फरिश्तों ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो दुनिया में हैं और अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं, ये तीसरी लिस्ट। इन्होंने पूछा मेरा नाम भी है? फरिश्ता बोला कि सबसे पहले आप ही का नाम लिखा हुआ, और ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत रखते हैं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, इसलिए मशायख कहते हैं तरीकत और तसव्वुफ तस्बीह और मुसल्ले का नाम नहीं है, खिदमत खल्क का नाम है। जिक्र तो चलते फिरते आते जाते सवारी कहीं भी कर सकते हो। शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने नसीहत फरमाई अमीर लोगों को कि उमरा मलूक और जिन लोगों को अल्लाह ने असबाब दिए हैं उनके लिए अल्लाह के पास पहुंचने का सबसे नज़दीक रास्ता ये है कि आजिज़ों की दस्तगीरी करें और हाजतमंदों की हाजत रवाई करें। यानी जिसको अल्लाह ने असबाब तरीक़ा सलीक़ा अता फरमाया वो बंदों की खिदमत में लगे, सबसे आसान रास्ता है अल्लाह के करीब पहुंचने का। एक और ख़त में आपने उस वक्त के जो थे बादशाह या गवर्नर उसको लिखा कि इस तारीक दुनिया में, इस अंधेरी दुनिया में कलम और ज़बान और माल और जाह से जिस जहाँ तक मुमकिन हो मोहताजों को राहत पहुँचाओ। रोज़ा नमाज और नफलें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन दिलों को राहत पहुँचाना उससे ऊंचा काम। यानी नवाफिल की बात, फर्ज तो पढ़ना ही है, उसके बाद खिदमत खल्क में लगने को बुजुर्गों ने फरमाया। हत्ता कि बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और कोई आ गया गरीब किसी हाजतमंद, तो आप अपनी तिलावत को उस वक्त रोकें और उसका हाथ पकड़ लें और उसकी खिदमत करें, पूछे भाई क्यों आए। حاجت مندوں کی طرف متوجہ ہونا وظیفے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ حضرت مفتی اعظم انڈیا میں ان کا گھر تھا اور وہاں پر غریبوں کا محلہ تھا اور مسجد آگے تھی اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس سے لوگ پانی بھر کے لے جاتے تھے. تو حضرت مفتی اعظم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو ایک بڑھیا پانی کا گھڑا اٹھا کے جا رہی تھی اور حضرت فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے. بڑھیا نے پانی کا گھڑا زمین پر رکھا اور تھک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی ہے جو میرا گھڑا اٹھوا دے. انہوں نے آگے بڑھ کر گھڑا اٹھا لیا اور وہ اچھا خاصا وزنی تھا, بہت وزن تھا, اور مفتی اعظم ان کے حساب سے وہ گھڑا بہت وزنی تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آئی کہ واپس میں اٹھا کے کمزور بڑھیا کے کندھے پہ رکھوں, تو انہوں نے اپنے کندھے پر ہی رکھا اور کہا کہ اماں بتاؤ کہاں جانا ہے, گھر کا راستہ بتاؤ, میں پہنچا کر آتا ہوں. بڑھیا آگے آگے اور مفتی اعظم سر پر گھڑا اٹھائے پیچھے پیچھے, اور وہاں پہنچ کے گھڑا رکھوایا اور واپس چلے آئے. فرما رہے تھے کہ جب واپس آیا تو وہ بوڑھی عورت اتنی زور زور سے دل کی گہرائی سے دین اور دنیا کی بھلائی کی دعائیں دے رہی تھی, دور تک اس کی آوازیں آتی رہی. حضرت نے سوچا کہ یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے, چند منٹ میں اتنی دعائیں مل گئیں. اگلی صبح پھر پہنچ گئے کنویں کے سامنے اور دیکھا تو کنویں میں ڈول ڈال رہی تھی, تو انہوں نے اس کا پانی بھی بھر دیا اور پھر گھڑا اٹھایا اور وہیں چھوڑ آیا, پھر دعائیں ملی. پھر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک یہ بڑھیا زندہ ہے یا میں زندہ ہوں تو یہ کام روز کیا کروں گا, اور جب تک وہ زندہ رہی کبھی ناغہ نہیں ہوا, روزانہ پہلے پانی کا مٹکا پہنچاؤ پھر مسجد کو جاؤ. شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے 17 دن ایک زخمی بیمار کتے کی خدمت کی. وہ کتا ایسا جانور ہے کہ اس کو کہتے ہیں گھر میں نہیں رکھو, اس کا لعاب نجس ہے اور ناپاکی ہو جائے گی اور برتن میں منہ ڈال دے تو اتنی مرتبہ دھونا پڑے گا وغیرہ وغیرہ, وہ الگ احکام ہے نماز کے, پاکی طہارت کے, لیکن کتا اللہ کی مخلوق ہے. تو شیخ نے دیکھا کہ ایک کتا زخمی ہے, بیمار ہے, تو انہوں نے جا کر اس کی خدمت کی اور وہ کتا صحت یاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے علوم اور معارف عطا فرمائے. جانوروں کی خدمت. ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, حدیث شریف میں آتا ہے مشہور قصہ, تو اس کی مغفرت ہو گئی. شیخ سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ, اذان ہوئی مسجد جانا تھا اور کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے, اذان ہوئی اور ان کا عربی کرتا بڑا تھا, کرتے کا دامن پھیلا ہوا تھا, یعنی ایک بلی آ کر ان کے کپڑوں پر بیٹھ گئی, اور اتنے میں اذان شروع ہو گئی. اب انہوں نے کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ اب اگر بیٹھے رہیں گے پتہ نہیں بلی کب اٹھے گی تو مسجد جانے میں دیر ہو جائے گی, اور بلی آ کر کرتے کے دامن میں گویا سو گئی. اب اس بلی کو کیسے اٹھائیں, اور اس کو اٹھائیں گے تکلیف ہوگی. انہوں نے گھر سے قینچی منگوائی اور اپنے قمیض کا دامن کاٹ دیا اور بلی سوتی رہی, اور یہ چلے گئے مسجد, نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کر آئے تو بلی اٹھ کر جا چکی تھی, وہ کپڑے کا ٹکڑا انہوں نے واپس اٹھا کے دوبارہ اپنی قمیض کو سی لیا. قصہ ختم. ایک صاحب دکان پر چینی لینے گئے, شکر لینے گئے, اور ایک پیکٹ میں, کاغذ کے پیکٹ میں ڈالتے تھے لوگ, لے کر گھر لے آئے. گھر آ کر جب پیکٹ کھولا تو اب چینی کے شکر کے پیکٹ میں 3-4 چونٹیاں آ گئی تھیں دکان سے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ بیچاری اپنے خاندان اور برادری اور کنبے سے الگ ہو گئی ہے. ٹوٹی گھو دکان سے اٹھا لایا, پتہ نہیں کہاں پہ اس کا بل ہوگا, اس کے بچے پریشان ہوں گے. تو شیخ فوراً واپس دکان پر گئے اور دکاندار گھبرا گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इस चक्कर में कुछ चूटियां आ गई थी, उनके घर वापस पहुंचाने को आया हूँ, चूटियों को वापस घर पहुंचा कर आया। अगला किस्सा है कि ईद का दिन था, मर्द औरतें बच्चे बड़े सब खुश थे और उम्दा से उम्दा कपड़े पहने हुए थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। और एक बंदा ईद के दिन भी बड़ी फिक्र में था। श्री सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईद के दिन भी हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह कुछ मजदूरी कर रहे थे, खजूरें चुन रहे थे। तो मैंने पूछा कि ईद के दिन काम क्यों कर रहे हैं? कहने लगे कि सामने एक यतीम बच्चा है रहता है और ये उदास है। सामने वाला यतीम बच्चा आज उसको गम है कि तमाम बच्चे नए कपड़े पहने हुए हैं और इसके पास कपड़े नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यतीम बच्चा भी ईद की खुशी मनाए, इसलिए मैं खजूरें चुनकर बाजार में बेचूंगा ताकि इसके लिए कपड़े। तो शागिर्द थे श्री सकती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हजरत ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आप जहमत मत फरमाएं। बच्चे को लेकर घर गए, उसको नए कपड़े दे दिए। फरमाते हैं इसके बदले में अल्लाह की तरफ से मुझे जो नूर अता किया गया उससे मेरी हालत ही बदल गई। देखो अल्लाह के यहाँ हर मखलूक की कदर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, सूरह नमल में किस्सा है। रास्ते में चूंटियों का मैदान आया, एक चूंटी ने दूसरी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों अपने अपने सुराखों में जा घुसो, यानी अपने अपने घरों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डाले। अल्लाह ताला को इस चूंटी की खैरख्वाही इतनी पसंद आई कि न सिर्फ उसका जिक्र कुरान मजीद में किया बल्कि उस सूरे का नाम रख दिया सूरे नमल, और हमेशा हमेशा के लिए उस चूंटी के नाम को इज्जत बख्शी। तो उस चूंटी के साथ अल्लाह का ये मामला है तो इंसान के साथ क्या मामला हो। इसी का एक और किस्सा है कि बारिश नहीं हो रही थी, पैगंबर लोगों को लेकर निकले, नेक लोगों को, कि जाके दुआ करेंगे कि अब बारिश हो जाए। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि एक चूंटी तुमसे पहले आके दुआ करके जा चुकी, इसलिए तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, काम हो जाएगा। एक चूंटी पहले आके बारिश की दुआ अपने पर उठा के जा चुकी है, अब इंसानों को आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते अल्लाह अकबर। इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह दो साथियों के साथ सफर में थे, सख्त सर्दी का मौसम था, रात में एक मस्जिद में उनको रुकना पड़ा, उसके दरवाजे का एक पल्ला टूटा हुआ था, सर्दी आ रही है। वो दोनों साथियों को उन्होंने आराम के लिए सुला दिया और सारी रात उस पल्ले के सामने खड़े रहे कि मेरे साथियों को सर्दी ना लगे। दो जी हाथ से खड़े होकर सर्दी को रोक रहे। मुसलमान जब मिस्र में गए और मिस्र फतह हुआ, अमर बिन अल आस रदी अल्लाह अन्हु, मिस्र फतह हो गया, अपने खैमे में आए, अब वापस जाना है, तो देखा कि एक कबूतरी ने वहां पर घोंसला बना दिया है और अंडे दिए हैं। मुसलमानों का लश्कर आया था, कुछ दिन खेमे लगाए, शहर में गए, जब वापस आए कि खेमे उठा लें तो देखा कि इसमें तो एक कबूतर ने घोंसला बना के अंडे दे रखे हैं। अब खेमे को उखाड़ेंगे तो उस कबूतरी को तकलीफ होगी, बच्चे उसको तकलीफ होगी। तो उन्होंने अपनी जमात को तो जाने की इजाज़त दे दी मगर वो खेमे को वहीं लगा रहने दिया कि छोड़ दो ये खेमा ताकि उस कबूतर को तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम रेलवे स्टेशन का एक वाकया बयान करते हैं कि एक मर्तबा पहुंचे ये हकीमुल उम्मत की खिदमत में और वहाँ का जो रेलवे स्टेशन था वो बहुत, यानी वहाँ अंधेरा सा था, वीरान सा था। जब रेल गाड़ी से स्टेशन पर उतरे तो अंधेरे में कोई आदमी पुकार रहा था, कुली कुली, यानी जो उस वक्त पोर्टर को पुकारते हैं सामान उठाने के लिए, मगर वहां अंधेरे में उस वक्त पोर्टर कहाँ से आता। तो इन्होंने देखा कि कोई फैमिली है, कुछ बेचारे, यानी आवाज से अंदाजा हुआ कि कुछ औरतें भी हैं और उनके पास सामान है और ये आवाज दे रहे हैं कोई पोर्टर मिल जाए। कोई नहीं था तो वो लोग घबराने लगे। मुफ्ती आजम ने सोचा कि सर्दी की रातें हैं, बेचारे इनके पास सामान भी है, और गौर किया आवाज में तो मालूम हुआ कि अरे ये तो मेरे जानने वाले हैं। तो अब किस्सा ये हुआ कि अगर हम जाकर कहेंगे कि लाओ जी हम सामान उठा लें तो ये उठाने नहीं देंगे, गरीब लोग हैं कभी उठाने नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा अब इनकी खिदमत किस तरह की जाए। जब आवाजें आने लगी कि अरे भाई कोई पोर्टर है सामान उठाने के लिए, तो मुफ्ती आजम को एक तरकीब सूझी, कहने लगे कि मेरे पास एक चादर थी, उसको मैंने मुंह पर लपेट लिया और एक पोर्टर की तरह का हुलिया बना दिया कि अब कोई पहचाने नहीं, और जाके कहा कि लो जी आ गया पोर्टर। उन्होंने कहा कि अच्छा ये संदूक रख दो, और वो बहुत भारी था। तो इन्होंने वो संदूक भी उठाया और कोई छोटा सामान भी उठाया और आगे आगे चले ताकि वो इनको पहचान न सकें, यहाँ तक के उनका घर और बस्ती आ गई। मैंने उनके घर में सामान रख दिया और आज तक उन लोगों को जिनको ये जानते थे उनको पता नहीं चला कि वो पोर्टर और कुली कौन था। अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक बुजुर्ग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह आप अपनी मखलूक को जहन्नम में अजाब देंगे, हालांकि ये सब आपके पैदा किए हुए हैं। तो इन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह जहन्नम तो इतनी बड़ी है, लेकिन ऐसा कीजिए कि मेरे वजूद और जिस्म को इतना बड़ा कर दें कि पूरी जहन्नम का पेट बस मेरे से भर जाए, और ताकि बेशुमार दूसरी मखलूक उसको आप जहन्नम में मत डालिए, सिर्फ मुझे डालिए। ऐसी दुआ करते। शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे ख्वाब में एक किताब दी गई, उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ तक मुमकिन हो लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ, क्योंकि मोमिन का दिल इसरारे रबूबियत का महल है। मोमिन का दिल, अल्लाह ताला टूटे हुए दिल में रहते हैं। जो आदमी लोगों की खिदमत करेगा किसी की दुआ मिल जाएगी। तो ये खिदमत का मजमून, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोस, दुनिया, बहुत अमल के मौके हैं, और नियत भी करें, दुआ भी करें और तलाश में निकलें। सहाबा का किस्सा ये था कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हो वो यतीम के बगैर खाना नहीं खाते थे। तो जब घर पर आए, किसी यतीम को लेकर आए कि इसको भी खिलाना है, और लोगों को भी पता चल गया तो सारे मदीने शरीफ के गरीब और यतीम लोग वो उनके रास्ते में बैठ जाते। नमाज पढ़ के निकले, गली में दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं कि ये साहब हमें अपने घर ले जाएंगे और खाना खिलाएंगे। तो सबको लाते और खाना खिलाते, तो हत्ता के लोग उनका खाना खा जाते और ये कमजोर हो गए। तो उनके घर वालों ने एक दिन तमाम फकीरों को पैगाम पहुंचाया कि हमारे मियाँ के रास्ते पे मत बैठा करो, हम अलग से पका के तुम्हें भेज देंगे। ऐसा नहीं, यानी घर वाले भी सखी हैं और पूरा घराना मदीना मुनव्वरा हर एक खिदमत में लगा हुआ है। उन्होंने कहा बस उस वक्त मत बैठा करो, हम अलग से भेज देंगे, और पकाकर भेज दिया। तो तमाम फकीर खा पी के चले गए। अब अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु मस्जिद से निकले तो देखा कोई आदमी है ही नहीं आज। तो उन्होंने कहा आज कोई फकीर नहीं आया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज कोई आया ही नहीं। हाँ, अगर किसी घर में मेहमान नहीं आता लोग परेशान हो जाते कि मेहमान नहीं आया, अल्लाह की रहमत नहीं। तो ऐसा ख्याल है, अल्लाह ताला हमें खिदमत के काम में लगने की तौफीक अता फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें, ये छोटा सा किताबचा है मौलाना आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह का, उसमें उन्होंने कुछ अहादीस शरीफा जमा की। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर इरशाद फरमाया कि दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई आदमी सफर में किसी जगह ठहर जाता है, और ऐसे रहो जैसे रास्ता चलने वाला मुसाफिर। आगे इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो, सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो, बीमार होने से पहले सेहत को गनीमत जानकर अच्छे अमल कर लो और मरने से पहले जिंदगी को गनीमत समझकर अच्छे आमाल कर लो। अल्लाहु अकबर। दूसरी रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, अपने आप को उन लोगों में काउंट करो जो दुनिया से जा चुके, यानी मौत को इस कदर करीब समझो कि हर वक्त ख्याल हो कि बस अब आई अब आई, और जहाँ तक हो सके नेक काम करते रहो और जिंदगी को आखरत के काम में लगाओ। अल्लाह। एक साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि इस्लाम में तो काम बहुत सारे हैं जिनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है, आप कोई एक चीज़ बता दीजिए कि मैं उसमें लगा रहूं, यानी कोई ऐसा एक काम बता दें जो मेरी नजात और ऊंचे दर्जात के लिए काफ़ी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह की याद में तर रहे, तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह की याद में तर रहे। एक साहब और आए कि मुझे नसीहत फरमाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम सब चीज़ों को छोड़ चुके हो, और ऐसी गुफ्तगू मत करो कि कल उस पर एक्सक्यूज़ करना पड़े, उधर माफ़ी मांगनी पड़े, और जो कुछ लोगों के पास है उससे नाउमीद हो जाओ। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझसे ये बातें हासिल करे फिर उन पर खुद अमल करे, या किसी ऐसे आदमी को बता दे जो उन पर अमल करे। तो इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा करूँगा। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और पाँच बातें गिनवाई। नंबर एक, हराम चीज़ों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार होगे। नंबर दो, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी रहो, तुम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। नंबर तीन, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम मोमिन हो जाओगे। और नंबर चार, लोगों के लिए वही चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो तो तुम मुसलमान हो जाओगे। नंबर पाँच, ज्यादा मत हंसो क्योंकि ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आदमी को नसीहत फरमाई कि पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को गुर्बत और तंगदस्ती से पहले, फुर्सत को मशगूलियत से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपनी दुनिया से मोहब्बत करेगा अपनी आखरत को नुकसान पहुंचाएगा, और जो अपनी आखरत से मोहब्बत करेगा अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए तुम बाकी रहने वाली चीज यानी आखरत को, फना होने वाली चीज़ यानी दुनिया पर तरजीह दो और उससे ही मोहब्बत करो, यानी आखरत से। आपके दो घर हैं, एक घर है दुनिया, दुनिया के हालात और दुनिया के वाक़यात और दुनिया की रिश्तेदारियाँ, दुनिया की चीज़ें और दुनिया की परेशानियाँ, ये तो एक घर है, इसमें 70-80 साल रहना है। उसके बाद एक और घर आपको मिलेगा, उसमें कितना दिन रहना है आखरत में। जब ये सवाल ये बंदा आजिज किसी से भी पूछता है, मुसलमान हो कि गैर मुसलमान, या वो आदमी जो किसी मज़हब को नहीं मानता, कुरान को भी नहीं मानता और अल्लाह को भी नहीं जानता, उससे भी ये सवाल पूछो तो सब मिलके कहते हैं कि आखरत में इटर्निटी है, फॉर एवर, हमेशा रहना है। तो दो घर हैं, एक घर में 70-80 साल रहना है और दूसरे घर में हमेशा हमेशा रहना है। हत्ता के दूसरे घर में अगर आज से 1 अरब साल के बाद, अभी 2017 है, 1 बिलियन ईयर्स के बाद कोई आदमी आए और कहे कि देखो कंप्यूटर में, फ़ोन में, कि आज क्या साल है, 1000 0027, आपसे कभी मुलाकात हुई थी, आप कभी जमीन पर तशरीफ ले गए थे और फला मुल्क के फला शहर में, या आपसे फोन पर कभी बात हुई थी, आप हमें पहचानते हैं? वो आदमी कहेगा, मियाँ क्या मजाक करते हो, 1 अरब साल गुजर गया, मुझे क्या मालूम कब कहाँ मिले थे तुम। अरे आप जमीन पर तशरीफ नहीं ले गए थे? 70 साल आपको अल्लाह ने वहां पे जिंदगी दी थी। स्कूल जाया करते थे आप बस पकड़ के, और बाजार जाते थे, और घर में आप खाने पकाते थे, और जो है ईद बकरीद वगैरह भी आप मनाया करते थे। अरे अब याद आया, हाँ वो ऐसा लगता है एक सुबह एक शाम का मंजर था। उसको कहते हैं कि जब वाकया गुजर गया तो दुनिया की हकीकत आदमी समझेगा कि एक सुबह या एक शाम, एक दिन का एक हिस्सा। अल्लाहु अकबर। इसलिए किस्सा ये है कि अल्लाह को तो किसी न किसी शक्ल में सारे लोग मानते हैं, और जो भी बेचारा मुसीबत में पड़ जाए, किसी पे इमरजेंसी आ जाए, कहीं अल्लाह बचाए जलजला सैलाब आ जाए, कोई जहाज डूबने लगे, कोई जहाज गिरने लगे, या कोई मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन मशीन पे चला जाए, तो मुसलमान हो के गैर मुसलमान या किसी भी मजहब का है कि नहीं है, सारे उस वक्त अपने मजहब और आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं, सारे मिलके एक अल्लाह को पुकारते हैं। तो किस्सा यह है कि खुशी में और राहत में और ईद बकरीद में भी अल्लाह को पुकारना, मुसीबत में तो सारे ही पुकारते हैं, उस वक्त कोई मसला नहीं है, ना मुसलमान गैर मुसलमान, सारे ही पुकारते। और दूसरा किस्सा यह है कि जितना अकीदा आखरत का मजबूत होगा, और जितना आखरत और जन्नत और मैदान हशर और मीज़ान और सिरात और कबर और बरज़ख, जितना उस पर गौर करेंगे, दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों का, आलू प्याज का गम निकल जाएगा कि दुनिया कोई चीज़ है, ये तो पानी का एक कतरा है, और ये तो बताया गया कि मच्छर का पर है, तो उसके लिए क्यों परेशान होते होगे, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये दुआ कबूल हो जाए वो दुआ कबूल हो जाए। भाई दुआ करो और ये करो कि अल्लाह ये दुआ आखरत में दे दीजिए, वो अल्लाह चाहेंगे तो वहाँ भी दे देंगे, दुनिया में भी दे देंगे। लेकिन हर वक्त दुनिया की फिक्र में रहना, ये तो मालूम हुआ कि आदमी बड़े फायदे से खाली है और छोटी चीज़ मांग रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, मिस्कीन फकीर को बगैर कुछ दिए वापस ना करना, हो सके तो खजूर का एक टुकड़ा ही दे देना। फिर फरमाया कि आयशा, मिस्कीनों से मोहब्बत करो, उनको अपने से करीब करो, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब करेगा। तो उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन कितनी समझदार थी कि वो 2 बोरे भरे हुए आए दिरहमों से, और उसमें सिल्वर कॉइन भरे हुए हैं, 1 सिल्वर कॉइन कितने का होता है, 2 बोरियां भरे हुए आए, उन्होंने उठा के तकसीम करने शुरू किए, नौकर को कहा कि फलां गरीब को दे आओ फलां गरीब को दे आओ, शाम तक सारे तकसीम कर दिए, तो 1 लाख 2 लाख दिरहम बांट दिए। तो खादमा थी, उसने कहा कि आप रोजे से हैं आज और घर में कुछ है नहीं खाना, पैसे भी नहीं है, अगर इसमें से 1 सिक्का आप बचा लेती तो हम आपके लिए कुछ खाने के लिए आते इफ्तार के लिए। उन्हें कहा, अरे तुम अगर पहले बताती तो हम 1 सिक्का बचा लेते, अब बाद में क्या बता रहे। उम्मुल मोमिनीन के पास एक जोड़ा था, एक एक्स्ट्रा अलग जोड़ा था, सारे मदीना शरीफ में जिस बच्ची की शादी होने वाली होती तो अनसार वो जोड़ा मांग कर ले जाते, उसमें दुल्हन को सजाते, और शादी के चंद रोज बाद वो जोड़ा वापस आ जाता। एक जोड़े में पूरे शहर की शादियां, आजकल हमने शादी को किस्सा बना लिया, किसी घर में बच्ची पैदा हो लोग परेशान 20 साल पहले से कि इसकी शादी करनी है। अरे भाई वहां तो इस तरह शादियां होती थी कि एक जोड़े में पूरे शहर की शादियां होंगी, किस्सा खत्म। आखरत के लोग थे वो। अबू जर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे दोस्त सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीजों का हुक्म फरमाया, हुक्म दिया कि मिस्कीनों से मोहब्बत करूं और उनसे करीब रहूं, और हुक्म दिया कि दुनिया की हालत में उसको देखूं जो मुझसे कम है, और उसको ना देखूं जो मुझसे माल और दौलत में बढ़ा हुआ है, और हुक्म दिया कि मैं सिला रहमी करूं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करूं, अगरचा रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़ लें, यानी वो अच्छा सलूक नहीं करते, लेकिन हमें उनसे अच्छा सलूक करना है। और हुक्म दिया कि सच बात कहूँ अगरचे कड़वा लगे, और हुक्म दिया कि अल्लाह के बारे में किसी बुरा कहने वाले के बुरा कहने से ना डरूं, और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करूं, क्योंकि ये कलिमात अर्श के खजाने में से हैं। मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो फरमाया, यमन के गवर्नर को नसीहत कर रहे हैं, फरमाया कि मज़े उड़ाने से बचना, क्योंकि अल्लाह के बंदे मज़े उड़ाने वाले नहीं होते। और जब वो यमन जाने के लिए सवारी में सवार हो रहे थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ साथ चल रहे थे, बहुत पसंद फरमाते थे। और ये मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु, क़यामत के मैदान में इनको एक झंडा दिया जाएगा, फ्लैग, और ये जितनी सदियों में जितने इल्म वाले उलमाए कराम आए हैं इन सब के सरदार होंगे, और उलमा की जमात के लीडर होंगे ये मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु। इनको आखिरी नसीहत फरमाई कि ऐ मुआज़, लोगों से खुशखुल्की के साथ पेश आना, लोगों से अच्छी तरह पेश आना। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा था, यानी सवार थे, सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि ऐ लड़के, अल्लाह के हक हुकूक़ की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह का ध्यान रखो, तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे, जब तुम्हें कोई सवाल करना हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, मदद मांगनी हो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, खूब समझ लो कि सारे के सारे दुनिया के इंसान मिलकर तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहें तो तुमको उससे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और सब जमा हो के तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। फिर फरमाया कि तकदीर के फैसले लिखे जा चुके, कलम उठा लिए गए और सहीफे सूख चुके। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ये ईद और हज का मौका, इसमें हरमैन शरीफ़ैन में जाने वाले और हज पर जाने वाले, और अब तो पूरी दुनिया सिमट कर एक गांव और एक मस्जिद हो गई है, तो जो अरफात के मैदान में बैठे होते हैं वहां से मैसेज आ जाते हैं कि जी हज हो गया, शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। तो ऐसा किस्सा है कि पूरी दुनिया अब एक मस्जिद हो गई है, बराबर का कोई पड़ोसी हो कि मैदान अरफात में हो, एक ही बात। अल्लाह पाक हमें आपको सबको हज पर जाने की और ले जाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक मुकामात के फजाइल, मक्का मुकर्रमा और खाना काबा के फजाइल, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ यरफ़ऊ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो वक्त याद करने के काबिल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की दीवारें बुलंद कर रहे थे। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद और ऐसी बाबरकत जगह जहां रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सवाब होगा कि वहां क़यामत तक, उससे पहले तक करोड़ों इंसान आते रहेंगे और उनके गुनाह माफ़ होते रहेंगे और उनकी दुआएं कबूल होंगी, और उस जगह पर जगह जगह यानी कितने पैगंबर, औलिया, सिद्दीकीन और जितने नेक लोग दुनिया में हैं वहां जाया करते हैं, और एक एक नेकी का सवाब वहां एक एक लाख के बराबर मिलता है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, एक रिक्शे में जा रहा है, एक गाड़ी में जा रहा है, एक जहाज में बैठ के उड़ रहा है, और एक रोशनी की रफ्तार से जा रहा है, अभी पहुंचा वापस भी आ गया। तो जिंदगी मुख्तसर है, खाना काबा में इतना सवाब मिलता है, 5 नमाजें वहां कोई जाकर जमात के साथ पढ़ ले, इतना सवाब मिलेगा कि 1000 बरस की उम्र हो घर में नमाज पढ़ते रहते, इतना सवाब नहीं मिलता। तो इब्राहिम अलैहि सलाम को कैसा शर्फ बख्शा अल्लाह ने कि लो जी काबा शरीफ तामीर करो, और उससे पहले उनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हर तरह से अल्लाह ने आजमाया है उनकी तौहीद, उनका जज्बा, उनका शौक कि दिल में और कोई ख्याल है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह का ख्याल है। यानी उन पे कैसे कैसे उन पे आजमाइशें आ रही हैं कि भाई बीवी बच्चे को फैमिली को जाकर दूर रेगिस्तान में छोड़ आओ और खुद कहीं और चले जाओ, न पानी है, न सब्जा है, न अस्पताल है, न स्कूल है, खाएंगे कहाँ से, वो लंबा किस्सा है, इस वक्त बताने का नहीं है। ऐसी कैसी आजमाइशें आ रही हैं कि बीवी बच्चे को जाकर पहाड़ों में जाकर छोड़ाओ, फिर बाद में आए तो कैसी आजमाइश हुई कि ये बच्चा जो तुम्हें प्यारा लग रहा है इस बच्चे की कुर्बानी करो, लो भाई। तो कैसी कैसी कुर्बानियों से गुजरे, जब सारे टेस्ट पास कर लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, आग में वो फेंके गए, अल्लाह ने बचा लिया, और लेकिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, मखलूक की खिदमत में दावत में लगे हुए हैं, अपने आप को भूल के, अपनी फैमिली को भूल के, लोगों को अल्लाह के हुक्म पहुंचाने में लगे हुए। फिर जब उनको जब हर इम्तहान में पास हो गए तो अल्लाह ने कैसी इज्जत बख्शी कि भाई अब काबा शरीफ तामीर करो, अब यहाँ लोग आएंगे, और हज का ऐलान करो, लोग आएंगे हज को। तो हर मुश्किल और परेशानी के बाद जो आदमी अल्लाह के हुक्म पूरा करता रहता है तो अल्लाह की तरफ से फतह, नुसरत और कामरानी और दुनिया आखरत की भलाइयाँ वो आती हैं। इसलिए अल्लाह की रज़ा सबसे ऊंची है, दुनिया की कोई चीज़ मिले ना मिले, फला चीज़ मिली ना मिली, ख्वाहिश पूरी हुई कि नहीं हुई, दुआ पूरी हुई कि नहीं हुई, अब ये क्या मसला है, मसला ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी होंगे तो वो तो फिर सोने का पहाड़ देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे, अपनी शान के मुताबिक देंगे। इसलिए बंदा अपने काम में लगा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला की 120 रहमतें, 120 रहमतें रोज़ाना काबा शरीफ पर नाजिल होती हैं, 60 तवाफ करने वालों पर और 40 वहाँ नमाज पढ़ने वालों पर और 20 बैतुल्ला को देखने वालों पर। जो आदमी ईमान और तस्दीक के साथ काबा शरीफ को देखे तो बुजुर्गों ने फरमाया कि गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज पैदा हुआ, और गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पत्ते दरख्त से झड़ जाते हैं। तो बैतुल्ला को देखना बहुत बड़ी इबादत है, और पहली दफ़ा कोई वहाँ जाए और पहली दफ़ा बैतुल्ला शरीफ पे नज़र पड़े तो उस वक्त जो दुआ मांगेगा वो कबूल हो जाएगी, मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ये दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली। एक बुज़ुर्ग थे, मक्का शरीफ में रहते थे, रोज़ाना 70 तवाफ दिन में और 70 तवाफ रात में करते, 70 तवाफ दिन में और 70 तवाफ रात में, यानी 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही, उसके बाद उनका ये मशगला था। और उसका अगर टोटल सफ़र देखा जाए, मुसाफत और डिस्टेंस जितना वो रोज़ाना चले तवाफ करने में, तो 30 मील रोज़ाना बैतुल्ला शरीफ के गिर्द चलते थे, 30 miles, और हर तवाफ के बाद 2 रिकत तहय्यतु तवाफ पढ़ते थे। तो 280 रिकतें ये हुई, और उसके अलावा 2 मर्तबा रोज़ाना पूरा कुरान पाक ख़त्म करते थे, 30 और 30, 60 जुज 2 कुरान रोज़ाना ख़त्म करते थे। अल्लाह अकबर। शेख फरमाएं यही लोग हैं जो आखरत की ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ कमा कर लिए जा रहे हैं। ये जो आजकल की आर्टिफिशियल दुनिया है, कंप्यूटर खोलो, फजूलियात, ये मैसेज देखो, उसको करो, फोन देखो, फला देखो, लेटर बॉक्स खोलो, इसमें से लेटर आ रहे हैं, ये एक जो मॉडर्न दुनिया है इसने लोगों का टाइम और लोगों का चैन परेशान कर दिया है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई किसी वक्त इन सब चीज़ों को बंद करके रखो और बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, आखरत के काम किया करो। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उसलिए इस्तेमाल की जाए जहाँ मजबूरी हो कि भाई ये हल्का पढ़ना है, लोग दूर हैं। जब कोई पढ़ने पढ़ाने का काम है या कोई लिखने लिखाने का है, कोई मजमून भेजना है, डरते डरते पहले लिखा हुआ मजमून हो, डरते डरते कंप्यूटर खोला, जल्दी से मैसेज भेजा, कंप्यूटर को बंद किया, खामोश, ऐसा होना चाहिए उसको, यानी हम उसके गुलाम न बने टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी हमारे काबू में हो, तो फिर वक्त फारिग हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मुल्तजम खाना काबा के करीब एक ऐसी जगह है, खाना काबा के दरवाजे और हजरे अस्वद के दरमियान, ये ऐसी जगह है जहां दुआ कबूल होती है। किसी बंदे ने या बंदी ने वहां जाके ऐसी दुआ नहीं की जो कबूल ना हुई हो, थोड़ी सी जगह। और जितने उस्ताद हदीस हैं, जब हदीस शरीफ सुनाते हैं तो अपना जाती तजुर्बा बताते हैं कि मैंने भी जाके उस जगह ये दुआ की और वो कबूल हुई। और शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मेरा भी जाती तजुर्बा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्के वालों को खत लिखा कि वहां 15 जगह दुआ कबूल होती है। तवाफ करते वक्त मुल्तजम पर, मीज़ाब रहमत के पास, काबा शरीफ के अंदर, जमजम के कुएं के पास, सफा और मरवा पर, और उनके दरमियान दौड़ते हुए, और मकाम इब्राहिम के पास, और अरफात के मैदान में, और मुजदलफा में, और मीना में, और जमरात में कंकरियां मारते वक्त। अल्लाह अकबर। तो बहुत फजाइल है मक्का मुकर्रमा के, मदीना मुनव्वरा के। जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए वही फायदा उससे हासिल होता है। लो जी मुस्तजाबुद दावात, अब जमजम का पानी लिए और दुआ की कि अल्लाह सेहत आफियत शिफा आखरत की बरकतें अता फरमाए, और दुनिया के भी छोटे मोटे मसाइल जिनमें परेशान है जो वो भी मांग लो। शबे मेराज में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर पर ले गए, आसमान से बुर्राक लाए हैं, एक ऐसी सवारी कि जहां उसकी नजर जाती वहां पर उसका पहला कदम पड़ता, और एक ही रात में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मकदस गए, वहां तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, फिर आगे सातों आसमान की सैर को तशरीफ ले गए और वापस भी आ गए। साइंस से इन चीजों को आदमी समझा सकता, पर अल्लाह का हुक्म है, कैसा कैसी सवारी आई। और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को लोगों ने जाके कहा कि देखो तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है कि एक ही रात में मक्का शरीफ से बैतुल मकदस चले गए और वहां से आसमानों की सैर हुई और वापस भी आ गए, बताओ ऐसी बात है, क्या तुम यकीन करोगे? तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन यकीन कर लिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं बिल्कुल सच्ची और हक बात, और इसी वजह से वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहलाए। हालांकि बहुत ईमानदार ताजिर थे, लेकिन उनकी मशहूरी की वजह तिजारत नहीं हुई बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई कि जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसा यकीन होना चाहिए। तो शबे मेराज में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से बुराक लाए और जन्नत से सोने का तश्त लाए, लेकिन कल्बे मुबारक को धोने के लिए जन्नत से पानी नहीं लाए बल्कि जमजम का पानी इस्तेमाल किया गया। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जन्नत से चीजें ला रहे थे तो पानी भी वहां से ला सकते थे। बताया कि जमजम का पानी इतना बाबरकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल कल्बे मुबारक को धोने के लिए जमजम का पानी इस्तेमाल किया गया। अल्लाह, इसी तरह फजाइल हैं मदीने शरीफ के, मदीना मुनव्वरा पे। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने मेरी वफात के बाद मेरी जियारत की, यानी मस्जिद नबी शरीफ मदीना मुनव्वरा रोज़े मुबारक में जाकर जियारत सलाम पेश किया, तो ऐसा है गोया मेरी जिंदगी में जियारत की हो। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी मेरी कब्र के पास आकर मुझ पर सलाम पेश करे तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझ तक पहुंचा देते हैं, यानी सलाम का जवाब दिया जाता है। फरमाया जो आदमी मेरी कब्र के पास खड़ा होकर दरूद पढ़ता है मैं उसको खुद सुनता हूँ, और किसी और जगह जो दरूद पढ़ता है तो उसकी दुनिया और आखरत की जरूरतें पूरी की जाती हैं, और मैं कयामत के दिन उसका गवाह और सफारशी बनूंगा। बड़े बड़े फजाइल हैं जिनको हज उम्रे पर जाना नसीब हो जाए, तो मदीने शरीफ की जियारत, मक्के शरीफ की जियारत। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों के कुछ हालात और वाकयात हैं कि जब वो जाते हैं तो उनको कैसी रूहानियत महसूस होती है। بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حج کے دن شام کے وقت ایک آدمی رو رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا کہ کتنی پاک ذات ہے اللہ کی کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اگر ہم کانٹوں پر اور گرم سوئیوں پر اس کے سامنے سجدے میں گرے تب بھی اللہ کی نعمتوں کے حق کا عشر عشیر ادا نہ ہو۔ اتنی پاک ذات حج میں آپ دیکھیں گے، حج کے عاشق، پتھریلی زمین ہے، گرم ہے، 120 ڈگری ٹیمپریچر ہے، یہاں والوں کو پتہ ہی نہیں کہ گرمی کس کو کہتے ہیں، مکہ شریف جاؤ تو پتہ چل جائے گا، یہاں تو ذرا گرمی ہوئی پریشان ہو گئے، بھائی یہاں کی گرمی وہاں کی سردی کا موسم ہے، جنت میں بیٹھے ہیں یہاں، اللہ کا شکر کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، مکہ شریف کی گرمی، اس میں آدمی کو ظہر کی نماز میں جانا مشکل ہوتا ہے، دھوپ میں ایک منٹ کو کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے لا یخافون لومت لائم، کہ اللہ کے عاشقوں کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد بھر گئی، باہر سڑک پر پتھریلی زمین پر چارکول پر بغیر کچھ بچھائے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ ایک منٹ اپنا سجدے میں سر رکھیں گے تو پیشانی جل جائے گی، لیکن اللہ کے عاشق ہیں اور اسی میں دوڑے جا رہے ہیں، کسی کی چپل ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، جمعرات پر جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، 20-20 میل چل رہے ہیں، کبھی زندگی میں 70 سال کا بوڑھا 80 سال کا بوڑھا 10 میل پیدل نہیں چلا، لیکن حج کے دن خوشی خوشی جاتا ہے کہ بھائی آج کے دن میرے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جس کو شوق ہوگا وہ اپنی تکلیفیں اور دنیا کی پریشانیاں بھول جائے گا، اس لیے اللہ کا شوق اور آخرت کا شوق پیدا کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے پاس کیا ہے اس کو مت دیکھیں۔ ابو عبداللہ جوہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عرفات کے میدان میں حج پر تھے، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، سو گئے، دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، فرشتے باتیں کر رہے ہیں حج کے دن، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا، دوسرا فرشتہ بولا کہ 6 لاکھ آدمی حج کو آئے، لیکن ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، آئے تو 6 لاکھ آدمی تھے لیکن صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ خواب میں یہ سن رہے ہیں بزرگ، ان کو اتنا افسوس ہوا، جی چاہا کہ اپنے منہ پر تماچے ماروں اور اپنی حالت پر خوب روؤں، تو امت کی حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ ہاں تو اتنے میں پھر ان کو آنکھ لگ گئی، تو اب دیکھا فرشتے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ایک فرشتے نے پوچھا کہ جن کا حج قبول نہیں ہوا ان کے بارے میں اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ نے کرم فرمایا اور جتنے مقبولین تھے 6 آدمی ان میں سے ہر ایک کے وسیلے سے 1-1 لاکھ آدمیوں کا حج قبول فرما لیا اور سب کا حج قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنا فضل اور انعام جس کو چاہے بخش دے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو کعبہ شریف کے پاس دیکھا کہ خوب رکوع اور سجدے کر رہا ہے، خوب رکوع سجدے کر رہا ہے، میں نے پوچھا بڑی کثرت سے نماز پڑھ رہے ہو، کہنے لگا وطن واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں، یعنی حج پر آئے حج کر لیا اب واپس نہیں جاتا، کعبہ شریف میں نمازیں پڑھ پڑھ کے پوچھ رہا ہے کہ واپس جاؤں کہ نہیں جاؤں، وطن واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا، دیکھو یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی، ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑی عزت والا بڑی مغفرت والا ہے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف یہ پیغام کہ تو واپس چلا جا، اس طرح کے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے۔ اب بتاؤ جو آج کے زمانے میں حج عمرے پر جا کے ہر وقت فون کھول کے اپنی اور سیلفی اور لوگوں کی تصویریں بناتے رہتے ہیں تو ان کو روحانیت کی ہوا بھی نہیں لگی کہ بھائی یہ چیزیں بند کرو، اب آگئے کعبہ شریف میں، اب اللہ اللہ کرو۔ اللہ اکبر، کیسے زمانے تھے کہ جب بادشاہ آتے تھے حج کو تو لوگ راستہ نہیں دیتے تھے، اور جب کوئی اللہ والے آ جاتے تھے تو لوگ ایسے ہٹ جاتے تھے کہ کعبہ شریف میں کوئی ہے ہی نہیں، کہ آپ جائیے پہلے۔ اللہ اکبر، हजरत जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह उनकी इबादत, ये जब हज को आए थे तो इनका किस्सा है कि बादशाह तो था, उसको लोगों ने रास्ता नहीं दिया, और जैनुल आबिदीन आए तो लोग हट गए, इनको रास्ता दे दिया। तो ये ऐसे बुजुर्ग थे कि रात और दिन में 1,000 नफलें पढ़ते थे, और जब वजू करते तो चेहरे का रंग जर्द हो जाता, और नमाज को खड़े होते तो बदन पर कपकपी, बदन लरजने लगता, और कहते कि तुम्हें खबर नहीं कि किस पाक जात के सामने खड़े होते हो। और दूसरा मामूल इनका था कि खिदमत खल्क करते थे, रात के अंधेरे में छुप कर गरीब लोगों के घर पर जाके उनकी मदद करते, बहुत सी फैमिलियां और घराने ऐसे थे जिनकी इमदाद करते, और उनको मालूम भी नहीं होता कि ये आदमी रात के अंधेरे में चीजें लाकर रख जाता है, कौन है ये। यानी आप समझो कि एक आदमी रोटियां पकाए और कंधे पर रख के पैकेट बना के गरीबों की बस्ती में दरवाजे में लटका दे रात भर। गरीब लोग सुबह उठे, देखा फ्रेश बेकरी सप्लाई मुफ्त में आ रही, मालूम ही नहीं कि कौन है। जब हजरत का इंतकाल हो गया तो उन 100 घरानों को मदीने शरीफ में पता चला कि जिंदगी भर उनको रोटियां कौन पहुंचाता था। नेकी कर, दरिया में डाल, किसी को मालूम ही नहीं। आजकल लतीफा ये है कि कोई एक काम किया, इतनी ईमेलें और इतने पोस्टर और इश्तहारात, हमने ये किया हमने वो किया। अरे भाई, नेकियां छुपाओ और आखिरत में ले जाओ, वहां जाके खूब उछलना कूदना, दुनिया में नेकियां बताने का नहीं है। अल्लाहु अकबर। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين। इससे पहले किस्सा गुजर चुका कि इंडिया के बादशाह तो हज नहीं कर सके, लेकिन एक माजूर आदमी जो है वो 10 साल तक घिसटता हुआ चला जा रहा था, और मक्का मुकर्रमा हज के इरादे से जा रहा था। हत्ता कि जब वो पहुंचा है, हज किया उसने, और उस गरीब के पास था, वो जानवर भी नहीं था कुर्बानी का, तो मीना में जाके उसने कहा कि अल्लाह, मैं तो जानवर भी नहीं लाया, सब लोग लाए, तो आप मुझी को कबूल कर लें। वहां जाके इंतकाल कर गया। तो हज का ऐसा किस्सा होता है, कोई आदमी आप तवाफ को चले जाए, आम दिनों में भी, तो आप देखेंगे कि माजूर आदमी भी बीच में तवाफ कर रहा होता है। अल्लाह की रहमत है, कहाँ से आया है, कैसे अल्लाह ने पहुंचाया है, हाथ पैर से रेंगता हुआ वो बीच में रश में तवाफ कर रहा है। आप मिल जाते हैं ऐसे अल्लाह के बंदे। इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह तवाफ कर रहे थे, एक आदमी को उन्होंने नसीहत की, एक आदमी को नसीहत की, बहुत काम की बात है। फरमाने लगे कि ये बात समझ लो कि तुम सालिहीन के दर्जे को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक 6 घाटियों को पार न कर लो। यानी जो अल्लाह वाला बनना चाहता है कोई आदमी, और दीन में तरक्की करना चाहता है, और ईमान यकीन की हकीकत, और अम्बिया सिद्दीकीन सालिहीन के साथ आखरत के दरजात हासिल करना चाहता है, तो सालिहीन के दर्जे को पहुंचने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने फरमाया कि पहली बात यह है कि नेमत के दरवाजे को बंद करो और सख्ती का दरवाजा खोलो, ये पहली घाटी है। दूसरा यह है कि इज्जत के दरवाजे को बंद करे और जिल्लत के दरवाजे को खोले। तीसरा यह है कि राहत और आसानी के दरवाजे को बंद करे और मशक्कत के दरवाजे को खोले। चौथा यह है कि सोने और स्लीपिंग और आराम के दरवाजे को बंद करे और जागने के दरवाजे को खोले, यानी रातों को उठ के अल्लाह अल्लाह करो। और पांचवी बात यह है कि अमीरी और गिना के दरवाजे को बंद करे और फकीरी के दरवाजे को खोले। और अगली बात यह है कि अपनी तमाम उम्मीदों और होप और ख्वाहिशात के दरवाजे को बंद करे और मौत की तैयारी के दरवाजे को खोले। तो बुजुर्ग ऐसे नसीहत फरमाया करते थे कि लोगों की इस्लाह हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, दुनिया में जिसको कुछ कम मिला, नहीं मिला, तो अगर ईमान वाला है तो आखरत में उससे ज्यादा मिल जाएगा। किसी को दुनिया में खूबसूरती थोड़ी कम मिली, कोई बात नहीं, जन्नत में इतनी खूबसूरती मिलेगी कि अगर उसको 1,000 मील के फासले से खड़ा किया जाए तो चेहरे पर इतना नूर होगा कि 1,000 मील दूर से दूसरों को नजर आएगा। एक आदमी दुनिया में नाबीना है, आंखें ही नहीं मिली, तो जी दुनिया में तो करोड़ों नाबीना लोग हैं, ना कभी कोई खुशबू देखी, ना कोई फूल सूंघा, ना कोई उनको पता है कि गुलाब का फूल इस रंग का होता है और चमेली ऐसी होती है और फला फ्रूट इस रंग का होता है, दुनिया की कोई चीज देखी ही नहीं। करोड़ों लोग मिलेंगे ऐसे, उनमें जो ईमान वाले हैं उनको कहा कि आखरत में ऐसी आंखें दी जाएंगी जन्नत में कि अब जहां चाहे देखो, अल्लाह का दीदार करो। फरिश्ता ऐसे जेवरात बना रहा है कि अगर उसका एक टुकड़ा यहाँ दिखा दिया जाए तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। मूसा अलैहि सलाम के से एक रिवायत आती है हदीस शरीफ में कि मूसा अलैहि सलाम को बताया गया कि सबसे छोटे दर्जे का आदमी कौन होगा जन्नत में। लंबा किस्सा है कि एक आदमी जो बिल्कुल आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा, सारे लोग चले गए जन्नत में, आखिरी आदमी आया, लास्ट वन, और वो बेचारा परेशान होगा कि अल्लाह मियाँ जन्नत भी भर गई, अब मेरे लिए तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। तो अल्लाह उसको कहेंगे कि अरे फलाने, क्या तुम इस बात पे खुश होगे कि दुनिया में एक बादशाह को जितनी पूरी जमीन पर बादशाहत दी जाती थी तुम्हें भी दे दें। वो आदमी बहुत खुश होगा कि बस अल्लाह मियाँ दे दीजिए। तो वो आदमी कहे, अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमको उतनी बड़ी सल्तनत और बादशाहत हम देते हैं और उतनी और उतनी और उतनी, पांच मर्तबा फरमाएंगे कि उससे पांच गुना तुम्हें देते हैं। तो आदमी बहुत खुश होगा और कहेगा बस अल्लाह दे दीजिए। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम्हें इतना भी दिया और उसका 10 गुना और दिया। तो इस रिवायत से बुजुर्ग फरमाते हैं कि पूरी जमीन ये प्लेनेट है, इससे 50 गुना बड़ी जन्नत उस सबसे आखिरी आदमी को दे। और एक नबी का किस्सा है, उन्होंने देखा कि क़यामत का मीज़ान है जिसमें नेकियां तौली जाएंगी, और इतना बड़ा मीज़ान है कि मशरिक से मग़रिब तक फैला हुआ है, इतना भारी बड़ा स्केल है कि मशरिक से मग़रिब तक पूरे आसमान में फैला हुआ है। तो वो बेहोश हो गए कि अल्लाह किसके आमाल इतने होंगे कि ये इस मीज़ान वज़न में तौले जाएंगे। तो उनको बताया गया कि जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो एक खजूर सदक़े पर इतना सवाब दे देते हैं कि मीज़ान भर जाए। लो जी, जितना आखरत की बातें और गैब का तस्किरा करेंगे दुनिया के गम दिल से निकल जाएंगे। जितना दुनिया दुनिया करेंगे दिन रात परेशान होंगे, और वो मिलेगा वही जो मुकद्दर में है। इसलिए अल्लाह वालों बुजुर्गों और उनसे राबता किया जाता है, अपने दिल की इसलाह कराई जाती है ताकि आदमी मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। अल्लाहु अकबर। दुआ पढ़कर, दरूद शरीफ पढ़कर पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियां, रमज़ान, ईद, बकरीद, हज, उम्रे, जितनी घरों में खुशियां आती हैं, शादी ब्याह, अकीक़े, बारात, और जितने गम आते हैं, जनाजे और अमवात, इन सब में अल्लाह पाक साबित कदम रखें, और अल्लाह पाक अपनी रहमत से, बरकत से सबके खुशियां और जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। इस बंदे आजिज के ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग का इंतकाल ईद की रात को हो गया, और देखो ईद का दिन है और लोग बेचारे गमगीन हैं, ये ज़िंदगी इसका नाम है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़रत फरमाए। बेचारी 5-10 साल से बहुत बीमार थी और बहुत सख्त तकलीफ में थी, और अल्लाह पाक उनके गुनाहों के, और तो गुनाह तो वैसे ही झड़ जाते हैं एक रात के बुखार से, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए और कब्र को जन्नत का बाग बनाए और आखरत के ऊंचे दर्जात अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक, या अव्वल अल अव्वलीन व या आखिर अल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिम अल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي ويا قيوم। اے اللہ, آپ ایسے احسان کرنے والے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا, ایسی نعمتیں دینے والے ہیں جن کو گنتی نہیں کر سکتے, ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا, اور ایسی طاقت جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ, ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے, آگے پیچھے دائیں بائیں سے, ہر مشکل سے, خوف سے, دشمنوں سے حفاظت فرمائیے, پوری امت کو بخش دیجئے. اے اللہ, امت کے غم اور پریشانی کو خوشی سے بدل دیجئے. اے اللہ, پوری امت کو نفع دینے والا علم عطا فرمائیے. اور آخرت کا بڑا ہونا دنیا کا چھوٹا ہونا ہمیں سمجھا دیجیے. اے اللہ, جس جس مسلمان کو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, جہاں جہاں جو جو حاجت ہے, پریشانی ہے, اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ, ایمان کی صفات, تقوی, احسان, حیا, توکل, صدق, اخلاص عطا فرمائیے. اے اللہ, فرشتوں کی سی احسانی کیفیت عطا فرمائیے. ہر وقت کا ذکر اور شکر, اچھی نیتیں, دعا عطا فرمائیے. اے اللہ, جتنی دنیاوی حاجتیں, پریشانیاں ہیں, ان کو اللہ اپنے خزانے سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ, جو مرحومین دنیا سے جا چکے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے. اے اللہ, ان کے درجات بلند فرما دیجیے. اے اللہ, آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجیے. عرش کا سایہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ, حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما دیجیے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ, دنیا میں ہمارے عمل کمزور ہیں, جو جو ثواب اور اجر کا وعدہ ہے, اے اللہ وہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ, دنیا میں جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں, اے اللہ, رمضان میں, حج میں, جمعہ اور عیدین کی راتوں میں, مبارک دنوں اور راتوں میں, اور اللہ والوں کی مجلسوں میں, ذکر کے حلقوں میں, علم سیکھنے والوں کی مجلسوں میں, اور اللہ کے راستے میں جانے والوں پر جو جو رحمتیں اترتی ہیں, اے اللہ, ہم سب محتاج ہیں, ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. پوری دنیا میں جتنی مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں, جتنے لوگ دعا کر کے جا چکے, اور جتنے قیامت تک دعا کریں گے, اے اللہ, ہماری طرف سے بھی قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا